नमस्कार भारत, 22 अगस्त दिन सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। रियो ओलंपिक का रंगारंग समापन, अमेरिका पदक तालिका में सबसे ऊपर, भारत को कुल 2 पदक मिले।
हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, हम सिर्फ 2 मेडल ले पाए, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। जो उम्मीद हम लेकर आए थे उस उम्मीद को हम पूरा कर सकते थे, बदकिस्मती हम पूरा नहीं कर पाए, बैड लक रही हमारी।
भारत के पंजाब राज्य में राष्ट्रीय स्तर की युवा हैंडबॉल खिलाड़ी ने आत्महत्या की, सुनिए क्या है पूरा मामला। गुजरात में दलितों ने भाजपा सरकार पर समझौते के लिए दबाव का आरोप लगाया, सीबीआई जांच की मांग।
प्रेशर देते हैं कि आप बात करो और ऐसा बोलने का कि हाँ मंजूर है, अगर हाँ मंजूर ना करो तो आपको मार देना चाहिएगा। आपका लड़का को मारा है तो आप अभी क्या 4 साल हो गया, तो किसी हिसाब से आप कुछ नहीं कर सके, तो क्या आप ये आपकी वाइफ आपकी बेटी रहेगी बाकी।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। रियो डे जनेरियो में ओलंपिक खेलों का समापन समारोह शुरू हो गया है। 16 दिन तक चले खेलों के सबसे बड़े मुकाबले में अमेरिका ने 46 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 121 पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा। ग्रेट ब्रिटेन दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने 2 पदक जीते और वो पदक तालिका में 67वें नंबर पर रहा। पारंपरिक रूप से समारोह का समापन ओलंपिक ध्वज को अगले मेजबान शहर को सौंपने के साथ होगा। अगला ओलंपिक 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो शहर में होगा। ध्वज सौंपने के बाद ओलंपिक मशाल बुझा दी जाएगी। समापन समारोह में भारतीय खिलाड़ियों के दल में सबसे आगे ध्वज लेकर साक्षी मलिक होंगी। उन्होंने भारतीय टीम को पहली बार महिला कुश्ती में पदक दिलाया है। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब एर्दोवान ने कहा है कि शनिवार को आत्मघाती हमला करने वाले चरमपंथी की उम्र 12 से 14 साल के बीच है। गाजियान्तेप में एक कुर्द शादी के दौरान हुए हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई थी। गाजियान्तेप में कुर्द समर्थित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सेलाहतिन देमिरतास ने सरकार से हमले के दोषियों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री सचमुच एक लोकतांत्रिक संगठन का हिस्सा हैं तो उन्हें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एक बच्चा गाजियान्तेप में आकर खुद को उड़ा लेता है तो ये किसी बच्चे का फैसला नहीं हो सकता, और ये ऐसी कोई हरकत नहीं जिसे कोई बच्चा कर सके। वे बिना सरकार या खुफिया तंत्र के समर्थन के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। सरकार के रूप में अगर आप इसे हल करने के लिए काम नहीं करेंगे तो एक दिन वो आकर संसद में बम फोड़ेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सेलाहतिन देमिरतास के शब्द। उधर राष्ट्रपति एर्दोवान का मानना है कि संभवतः इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने इस बम हमले का आदेश दिया होगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल की सेना ने कहा है कि उसके विमानों और टैंकों ने गजा पट्टी के उत्तर में बेत हनाउन शहर पर गोलाबारी की है। ये हमला फिलिस्तीनी चरमपंथियों की ओर से किए गए रॉकेट हमले के जवाब में किए गए। ये रॉकेट इसराइली स्टेरॉट शहर में गिरा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलिस्तीन से आ रही खबरों में कहा गया है कि इसराइली हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। भारत में उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। मुमकिन है कि ये इस सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र हो, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में ही वहाँ चुनाव होने हैं। विपक्षी दल सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी हमलावर रहेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ये सत्र 30 अगस्त तक चलेगा। चिली में लाखों लोग देश के विवादित पेंशन योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि 1981 के बाद से इस योजना में शामिल होने वाले लाखों लोगों को रिटायरमेंट के बाद बहुत कम पैसे मिलेंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं लाइव। रियो के माराकाना स्टेडियम में रियो ओलंपिक का इस समय विधिवत समापन हो रहा है। आसमान में बादल हैं, बारिश हो रही है, स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक हैं और तमाम देशों के खिलाड़ी दल बल के साथ स्टेडियम में मौजूद हैं। रंगारंग कार्यक्रम जारी है। इस खबर पर और जानकारी के लिए रियो से वरिष्ठ पत्रकार नौरिस प्रीतम अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन पहले बात करते हैं रियो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की। पदक तालिका पर नजर डालें तो भारत एक कांस्य और एक रजत पदक लेकर पदक तालिका में नीचे, बहुत नीचे है, जबकि भारतीय दल से कम 10 पदकों की उम्मीदें लगाई गई थी। कहां चूक हो गई भारत से रियो ओलंपिक में, भारत के आला अधिकारी इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं नौरिस प्रीतम की इस रिपोर्ट में।
एक और ओलंपिक्स इतिहास में समा गए और छोड़ गए अपने पीछे खेलों में भारत की असफलता की एक और चिरपरिचित कहानी। 10 मेडल की उम्मीद रखने वाला 119 सदस्यों का अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल केवल 2 मेडल ही जीत सका। दल के नेता राकेश गुप्ता इसे बदकिस्मती कहते हैं।
उम्मीद थी कि हम 8, 9 या 10 मेडल हम ले सकते हैं, उस लिहाज से हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, हम सिर्फ 2 मेडल ले पाए, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। जो उम्मीद हम लेकर आए थे उस उम्मीद को हम पूरा कर सकते थे, बदकिस्मती हम पूरा नहीं कर पाए, बैड लक रही हमारी।
ये ठीक है कि मेडल कई भारतीय खिलाड़ियों को सिर्फ छू कर निकल गए, उनकी झोली में नहीं गिरे, लेकिन क्या कारण था उसका, एक बार फिर राकेश गुप्ता।
समय लगेगा इसको एनालाइज करने की, कमी कहाँ रह गई, लेकिन शूटिंग के अंदर अभिनव बिंद्रा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 4th प्लेस रही, वो मेडल पक्का था हमारा। जीतू राय ने क्वालिफाई किया, वो मेडल हमारा पक्का था, उम्मीद थी हमें। गगन से हमें उम्मीद थी, गुरप्रीत सिंह से हमें उम्मीद थी शूटिंग के अंदर। उसके बाद दीपा कर्माकर पहली बार आई, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मेडल के नज़दीक पहुंचकर फिर मेडल हाथ से निकल गया, वो रह गया एक। उसके बाद टेनिस का अगर लें, टेनिस में मिक्स डबल्स के अंदर हम लोग जो लास्ट टूर्नामेंट लास्ट वाला मैच हम हारे, जो कि मेडल के लिए ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच था, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने खो दिया, वो भी हमने। इस तरीके से आर्चरी में जहाँ हमारे को उम्मीद थी वो हमारे से निकल गई। रेसलिंग में फोगट इंजर्ड हो गई जबकि वो जीत रही थी। तीसरा जैसे योगेश्वर से बिल्कुल पूरी उम्मीद थी हमारे को कि ये गोल्ड मेडल हमको मिल जाएगा, तो एटलीस्ट हम 3 मेडल, तीनों कलर का एक मेडल हमको मिल जाएगा।
लंदन के पिछले खेलों के बाद भारतीय पहलवानों से काफी उम्मीद थी, लेकिन सुशील और नरसिंह यादव विवादों में ही घिरे रहे, यहाँ तक कि नरसिंह खेलों में भाग तक न ले सके और योगेश्वर दत्त भाग लेकर भी कुछ ना कर सके। तो क्या इसे पुरुष पहलवानों का फ्लॉप शो कहा जाए?
फ्लॉप शब्द तो यूज़ करना मैं एक अच्छा नहीं समझूंगा, लेकिन हाँ उसमें निराशा हमको हाथ लगी। लेकिन नरसिंह यादव के विवाद में भी ज़्यादा जाना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वो चीज़ अब जो है वो है सबके सामने। लेकिन हम कोई ये कहे कि हमसे कोई चूक हुई है, उसमें हमारी चूक या इंडियन ओलंपिक की या रेसलिंग फेडरेशन की कोई चूक नहीं थी, क्योंकि सभी तरफ से क्लियरेंस मिलने के बाद इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तीनों से जब हमें क्लियरेंस मिल गई तब हमने नरसिंह यादव को यहाँ पर बुलाया।
क्या कहें इसे, बदकिस्मती, तैयारी में कमी या क्षमता की कमी, कारण कुछ भी हो, भारत जैसे विशाल देश के पदक तालिका में 2 मेडल आंख में खटकते हैं। सवाल यह है कि क्या टोक्यो में होने वाले अगले खेलों के लिए हमने कोई सबक सीखा है? नॉरिस प्रीतम, रियो ओलंपिक, BBC ब्राजील।
और रियो से नॉरिस प्रीतम टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नॉरिस, बताएं दर्शकों को हमारे रियो में क्या समय है इस वक्त?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ना जाने कितनी मुसीबतें, जीका और इन सब के बावजूद आखिर साउथ अमेरिका के जो दक्षिणी अमेरिका के जो पहले ओलंपिक खेल थे वो खत्म हो रहे हैं और इस बात का फक्र जो है यहाँ बैठे स्टेडियम में, माराकाना स्टेडियम में जितने हजारों लोग बैठे हैं उनको और जो हर ब्राजील निवासी उसको सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ये गेम यहाँ खत्म हो रहे हैं बिना किसी बड़ी रुकावट के। हालांकि खबरों में काफी कहा गया था लेकिन वो इनको इसकी इस बात की बहुत खुशी है और स्टेडियम में जो है एक बड़ा रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। और जो अक्सर जो क्या होता है कि जो ओपनिंग सेरेमनी में लोग बड़े स्टिफ होके एक बड़े औपचारिक रूप से आते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वक्त क्लोजिंग सेरेमनी में जो है लोग मिलजुल कर एक भाईचारे के रूप में आते हैं और ऐसा ही यहाँ कुछ देखने को मिला। और भारत की ओर से तिरंगा लेके साक्षी मलिक, जिन्होंने भारत के लिए पहला मेडल जीता था, वो भी निकली और बहुत ही मिलजुल कर जो लोग जा रहे थे तो एक बड़ा अजीब सा दृश्य था और सबको एक बड़ी तसल्ली थी और शांति थी कि किसी तरह ये गेम खत्म हो गए। और ब्राजील के लिए एक बहुत गर्व की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि फुटबॉल का जो उन्होंने कल खिताब जीता पहली बारी, हालांकि फुटबॉल जो है बड़ा एक मशहूर गेम है, नेशनल गेम है, राष्ट्रीय गेम है ब्राजील का, लेकिन पहली बार उन्होंने जो कल फुटबॉल का खिताब जीता उसकी आज तक सेलिब्रेशन चल रही थी। और इस वक्त जबकि यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ बहुत तेज हवा चल रही है, मतलब एकदम तूफान की तरह हवा चल रही है और दोपहर से बारिश थी उसके बावजूद यहाँ पे लोग जमा हुए और एथलीटों को भी काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से 2 घंटे पहले एथलीट्स को स्टेडियम के पीछे जमा होना पड़ता और आज भी हुए और बहुत तेज बारिश थी। उस वक्त वो रेन कोट लेके इन इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं और
हालांकि एक थोड़ी सी कमी ये लग रही है कि अभी पता नहीं चल रहा होगा कि नहीं, ब्राजील के जो एयरफोर्स के जवान थे उनको एक जेट का करतब दिखाना था और हेलीकॉप्टर से उन्होंने एक रंगारंग कार्यक्रम आकाश में दिखाना था, लेकिन इस तरह के मौसम को देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो अब शायद नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के बस ये हो रहा है और बस अब गेम खत्म हो जाएंगे और अब इंशाल्लाह टोक्यो में हम मिलेंगे।
रियो ओलंपिक का रंगारंग समापन, ये थे रियो से वरिष्ठ पत्रकार नौरिश प्रीतम।
BBC.
रुख कर रहे हैं भारत का, जहां पंजाब राज्य में 20 साल की राष्ट्रीय स्तर की एक हैंडबॉल खिलाड़ी की आत्महत्या का मामला सामने आया है। खिलाड़ी का नाम पूजा है, जिसने आत्महत्या से पहले एक खत छोड़ा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई गई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने चंडीगढ़ में स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा से बात की।
पूजा एक नेशनल स्कूल खेली हुई खिलाड़ी थी हैंडबॉल की, और ये पटियाला में खालसा कॉलेज में इनको दाखिला मिला था पिछले साल स्पोर्ट्स कोटा से ही, और इस बार इनको जो क्वालिफाई करना होता है पंजाब सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद इनका मामला जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने यूनिवर्सिटी को भेज दिया था। ऐसे 9 बच्चे थे, जब तक वो जानकारी आ पाती और उनका एडमिशन होता 18 तारीख को, उसके बाद उनको हॉस्टल मिलना था जो कि पिछले साल उन्हें सब कुछ फ्री मिला था। तो पूजा के परिवार को शिकायत थी कि क्योंकि उसको हॉस्टल नहीं मिला तो वो क्योंकि गरीब परिवार से थी तो वो उसको खर्चा नहीं उठा सकती थी, इसलिए लड़की ने सुसाइड कर लिया। और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि 18 तारीख को हमने स्पेशल केस में इनको एडमिशन दे दिया था और अभी पूजा को दोबारा से हॉस्टल के लिए अप्लाई करना था, वो असल में अप्लाई तक नहीं कर पाई और जानकारी मिली कि उसने अपने घर पे फंदा लगा के आत्महत्या कर ली।
ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अब एक सुसाइड नोट लिखा है प्रधानमंत्री के नाम।
उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम तो नहीं लिखा, उसमें प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी को ये कहा है कि श्री मोदी जी मेरे परिवार का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे एक कमाने वाला है और 4 खाने वाले हैं, इस तरह का उनके एक सुसाइड नोट में जिक्र आया।
तो इस मामले में क्या कुछ आगे हुआ है, पुलिस ने केस दर्ज किया, क्या आगे कार्रवाई हुई है?
पुलिस ने इसमें एक केस दर्ज कर लिया है थाना कोतवाली में और मेरी वहाँ के SHO से भी बात हुई, उनका कहना है कि हमने प्रिलिमिनरी जानकारी करना शुरू कर दिया और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उससे बात की है, उनसे उनका पक्ष मांगा है और जो कोच हैं GS हिल उनको खोजने की कोशिश की लेकिन वो लगता है वो कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं, वो अभी मिल नहीं पा रहे और पुलिस इंतजार कर रही है कि कोच से जब बात हो पाए या कोच का बयान लिया जा सके पूरी स्थिति का पता लगे।
तो कोच का क्या इसमें रोल देखा जा रहा है?
कोच का रोल क्योंकि सुसाइड नोट में जब किसी का नाम आ जाता है तो पुलिस को ये जरूरी होता है पुलिस की जांच में उस व्यक्ति से उसका पक्ष जाना जाए और वो ही एक तरह से दोषी माना जाता है, तो जो FIR है वो कोच के खिलाफ ही दर्ज हुई है, कॉलेज के खिलाफ नहीं हुई है। कोच कॉलेज की ही नीति को लागू कर रहे थे तो जांच में कॉलेज का भी निश्चित तौर पर नाम आएगा।
पंजाब में राष्ट्रीय स्तर की युवा हैंडबॉल खिलाड़ी पूजा ने आत्महत्या की, ये थे चंडीगढ़ से स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा। और अब बात गुजरात की, जहां सुरेंद्र नगर में 4 साल पहले पुलिस की गोलियों से 3 दलित मारे गए थे। राज्य सरकार ने इसकी पड़ताल के लिए विशेष जांच दल यानी SIT बनाने की घोषणा की, लेकिन मारे गए दलितों के परिजन चाहते हैं कि इस मामले की जाँच CBI से कराई जाए। उनका आरोप है कि भाजपा के कुछ नेता इस मामले को रफा दफा करने के लिए उन पर दबाव भी बना रहे हैं। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने वालजी भाई राठौड़ से बात की, जिनका 16 साल का बेटा मेहुल पुलिस की गोली से मारा गया था।
सरकार के पास मैं कभी जाने के लिए तैयार नहीं था, सरकार का उस प्रेशर इतना रखा था मेरे पर कि रात को 11 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे इतना टाइम पे 4 बार ले गए और प्रेशर देते हैं कि आप जो भी कहो वो बात करो और ऐसा बोलने का कि हाँ मंजूर है, अगर हाँ मंजूर ना करो तो आपको मार देना चाहिएगा, आपका लड़का को मारा है तो आप अभी क्या 4 साल हो गया तो किसी हिसाब से आप कुछ नहीं कर सके तो क्या आप ये आपकी वाइफ आपकी बेटी रहेगी बाकी, इसे दबाकर मेरे को घर में फूर कर जो मंत्री साहब है उसका घर के अंदर फूर कर मेरे को ऐसा कहा था।
जी किस मंत्री के यहाँ आपको ले जाया गया?
दलित का मंत्री है आत्माराम परमार साहब, उसी के घर 4 बार ले गए है मेरे को।
और कितने बजे रात को समझौते के लिए बातचीत कर ली?
पहली बार गया उसी टाइम 11 बजे गया था, 1:30 बजे तक रुका और फिर मैं हाँ हाँ करके ऐसे निकल जाता था, अपना हाथ से मैं कुछ लिखना नहीं चाहता था और ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था उसको बाहर निकलने के लिए। दूसरी बार भी ऐसा किया और तीसरी बार जब ले गया ना तब भी तो मेरे को ऐसे बहुत डांट के किया है।
तो आप लोगों ने फिर भी क्या उनके फैसले को नहीं माना SIT जांच के?
नहीं, अगर CID क्राइम ब्रांच का वो रिपोर्ट सही नहीं है तो ये सीट क्या करेगी? और मेरे को CBI की तपास चाहिए, मैं उसको बार बार कह चुका हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ।
और इससे पहले भी क्या सरकार से किसी तरह की बातचीत हुई, कोई समझौता इससे पहले भी हुआ था?
जब मामला हुआ 2012 का, उसी टाइम से हम लोग CBI की तपास की, बार बार अर्जी दे चुका हूँ, हाई कोर्ट में भी रिट दाखिल की हुई है, और फिर भी सरकार नहीं देती है। और जो रिपोर्ट बनाकर रखा है वो भी सरकार खोलती नहीं है, कि ये जो CID क्राइम ब्रांच ने जो रिपोर्ट बनाया है वो रिपोर्ट भी मैं खोलवाना चाहता हूँ, कि जो रिपोर्ट में लिखा है उसमें उसको खोलो, तो वो भी खोलना सरकार नहीं चाहती है।
ये थे वालजी भाई राठौड़, जिनका 16 साल का बेटा मेहुल 4 साल पहले पुलिस की गोली से मारा गया था। वालजी भाई गुजरात की भाजपा सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे कि उन पर इस मामले में समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस आरोप पर भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने ही भाजपा के प्रवक्ता भरत पंड्या से बात की।
देखो, ये ऊना के मामले के बाद ये उठा है और ये ने लिंकअप करने की कोशिश किया है पूरे गुजरात में ऐसे इंसिडेंट को। तो मैं समझता हूँ ऊना के बाद ये घटना हुई, फिर भी उनको अगर रिपोर्ट से संतोष नहीं तो फिर भी हमने सीट की रचना, ये मामूली बात नहीं है, शायद पहली बार इसी प्रकार की सीट की रचना हुए, कोई राज्य में ऐसी सीट की रचना नहीं हुई, ऐसे यूपी में, बिहार में कई जगह दलित पर अत्याचार हुए, कहीं सीट ने स्थापना नहीं किया, कहीं डेजिग्नेटेड कोर्ट ने अनाउंस नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कोर्ट के हिसाब से, न्याय के हिसाब से हमने पूरा एक्शन लिया है।
जो लोग इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि राज्य की पुलिस को ही इससे ही ये SIT बनाई गई है, और वैसे भी सरकार जो है वो पुलिस को बचाने की ही कोशिश कर रही है।
नहीं, ये बात गलत है। आप किसी भी तीनों अधिकारी को रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, मान लीजिए CBI कर दिया तो भी वही कहेंगे कि भी केंद्र सरकार में BJP सरकार है इसलिए CBI भी उनकी है, ऐसा ही कहेंगे। तो उनका जो एंगल है, दृष्टिकोण, वो फिक्स है। हम जो भी करें लेकिन जिस लोगों को विरोध करना है वो विरोधी करती रहेंगे।
लेकिन क्या जब ये सुरेंद्रनगर वाला मामला हुआ था, फायरिंग में दलित लड़कों की मौत हो गई थी, तब क्या मुख्यमंत्री गए थे वहाँ?
मैंने वही कहा कि ऊना के बाद ये इंसिडेंट फिर से किसी ने लिंकअप करने की कोशिश किया है। उसका इरादा समाधान का नहीं है, उसका इरादा सॉल्यूशन का नहीं है, उनका इरादा सिर्फ विरोध करके बदनाम करने का है।
ये थे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भरत पंड्या, जो कह रहे थे कोई है जो दलितों के बहाने सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कार्यक्रम में आगे समाचार पत्रों की सुर्खियां, लेकिन पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र यूं तो 30 अगस्त तक चलेगा, दिन के हिसाब से सत्र थोड़ा छोटा नजर आता है, लेकिन मौजूदा विधानसभा का शायद आखिरी सत्र होने के नाते और पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को लेकर सदन में टकराव की आशंका है। इस खबर पर और जानकारी के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
आज से शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र विधानसभा चुनाव से पहले का शायद आखिरी सत्र हो, लेकिन जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो सदन के भीतर का नजारा काफी कुछ बदला होगा। सबसे ज्यादा लोगों की उन विधायकों पर नजरें होंगी जो पिछले सत्र तक तो अपने दल के विधायकों के साथ बैठते थे और आज शायद कहीं और मिले। वहीं दूसरी ओर सरकार पर जहां GST बिल पास कराने से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों को सुप्रीम कोर्ट की फैसले की मार से बचाने के लिए कानून बनाने का दबाव रहेगा, तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने के ढेरों मौके। दिलचस्प बात यह होगी कि इस बार सदन में सरकार घिरने की बजाय भारतीय जनता पार्टी भी घिरती नजर आएगी, जो कि न तो सत्ता में है और न ही प्रमुख विपक्ष। इसके संकेत रविवार को आगरा में हुई रैली में BSP नेता मायावती के भाषण में साफ तौर पर दिखे।
दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते इन वर्गों का काफी ज्यादा उत्पीड़न व शोषण हो रहा है, और इस मामले में दलित छात्र रोहित बेमुला कांड व गुजरात का ऊना दलित कांड तथा यहाँ उत्तर प्रदेश का दया शंकर सिंह कांड आदि इसके खास उदाहरण है। केंद्र में BJP की सरकार को बने हुए अब 2 वर्षों से भी ज्यादा का समय हो गया है, तो क्या गरीब व कमजोर वर्गों के लोगों को सरकारी राशन सस्ता मिल रहा है? क्या बिजली पानी आपको फ्री मिल रहा है? क्या मकान बनाकर दिए नरेंद्र मोदी ने?
वहीं रविवार से ही कांग्रेस पार्टी ने भी 27 साल यूपी बेहाल के नारों के साथ अपनी चुनावी यात्राओं का दूसरा दौर शुरू किया। अक्टूबर तक चलने वाली इस यात्रा में पार्टी के नेता राज्य के सभी जिलों में इस नारे को लेकर जाएंगे। मौजूदा विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, उनमें भी 6 विधायक अब दूसरे दलों में जा चुके हैं, फिर भी वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहेगी, इसकी पूरी संभावना है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं कि विपक्षी पार्टियां सरकार को खासतौर पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरेंगी।
चुनाव में या चुनावी जंग के पहले एक ही आदमी मिशन है, दो बड़ी घटनाएं हुई, मथुरा वाला आपने देखा कि पुलिस की गोली से लगभग 30 लोग मरे और उसके बाद बुलंदशहर गैंगरेप हुआ जिसमें पुलिस जो है घेरे में है, कोर्ट ने सीबीआई को ऑर्डर किया। सत्तारूढ़ दल है जो है या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, वो सप्लीमेंट्री बजट पास कराना उनके लिए इसमें मुख्य होता है कि बजट पास करा करके वो ये संदेश देना चाहेंगे कि देखिए 5 साल लगातार हमने विकास के एजेंडे पर काम किया और इस आखिरी सेशन में भी वो अतिरिक्त पैसा जुटा करके वो विकास के लिए ही काम करेंगे।
वहीं सत्र में दल बदल करने वाले विधायकों और उनके तेवरों पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे विधायकों पर। पिछले सत्र तक नेता प्रतिपक्ष और मायावती के भरोसेमंद रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब मायावती के ही खिलाफ हो सकता है आग उगलते नजर आए। वहीं इन विधायकों की सदस्यता का मसला भी अभी विवादित है, लेकिन सुभाष मिश्र कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर ये बात अब बहुत मायने नहीं रखती है।
हाउस में कुछ नए चेहरे नए जगह पर बैठे हुए दिखाई देंगे, लेकिन उसका कोई बहुत पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए उसको डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं स्पीकर, तब 2-4 महीने का मामला बचा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। असली मामला ये कि हाउस के माध्यम से फ्लोर पर कौन किसको घेर लेता है।
बहरहाल जानकारों का कहना है कि सरकार का असली मकसद अनुपूरक बजट पास कराना है और इसमें उसे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना शायद न करना पड़े, लेकिन कानून व्यवस्था पर विपक्ष के एकजुट हमले का सामना करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को एक बार फिर संदीप सोनी का नमस्कार। जिन श्रोताओं ने हमें अभी अभी सुनना शुरू किया है उनके लिए हम बताना चाहेंगे आज की बड़ी खबर अभी तक की यह है कि रियो ओलंपिक का इस समय रंगारंग समापन हो रहा है। अमेरिका पदक तालिका में सबसे ऊपर बना हुआ है, भारत को कुल 2 पदक मिले हैं और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियाँ जानने का। निखिल रंजन स्टूडियो में आ चुके हैं।
संदीप, सबसे पहले जो मेरी नज़र गई है वो इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज पर एक तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो 2 अपने सुरक्षा कर्मियों की गोद में कहें कि कंधे पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं उनके चेहरों पर भी हल्की सी मुस्कान है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी मुस्कान है और ऐसा लग नहीं रहा कि वो किसी बाढ़ पीड़ित का हाल पूछने गए हों। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं रास्ते में थे और फंस गए थे और उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इस तस्वीर को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है, जो राजनीतिक दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं। और इसके साथ ही एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हिंदुस्तान पर छपी है, जिसमें सबसे ऊपर एक बहुत विशाल मगरमच्छ और दूसरा एक बहुत बड़े अजगर की तस्वीर है। ये भी बाढ़ से रिलेटेड है क्योंकि ये दोनों प्राणी जो है वो बाढ़ के पानी के साथ शहर की सीमा में आ गए थे और इन्हें अब पकड़ लिया गया है।
कहाँ की खबर है ये?
चंदौली की खबर है और ये जी उत्तर प्रदेश के चंदौली में मगरमच्छ को पकड़ा गया है और लखनऊ में शहर के बाहर जो स्थित था वो बटलर पैलेस झील, शहरी क्षेत्र में ही है, तो वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जब जाल डाला गया तो उसमें एक बहुत विशाल अजगर जो है वो फंस के आया है। तो ये बाढ़ से रिलेटेड खबरें थी। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में इस वक्त बाढ़ की पानी जो है वो शहरों में घुस रहा है और वो उससे परेशानी हो रही है। इसके बाद हिंदुस्तान में और दूसरे तमाम अखबारों में अरुण जेटली के उस बयान को प्रमुखता से छापा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्थर मारने वाले सत्याग्रही नहीं हैं, वो कश्मीर में जो पथराव की घटनाएं हो रही हैं और वहां पिछले कई दिनों से
कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद
उसके बारे में उन्होंने कहा है। रोहिणी में दिल्ली का जो प्रमुख इलाका है वहां पर कल दिन दहाड़े पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी और ये खबर भी लगभग सभी प्रमुख अखबारों में दिल्ली से छपने वाले पहले पेज पर ही जगह बनाने में कामयाब हुई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ये मामला सामने आया है कि आसमान में जो विमान टकराने की घटनाएं हुई हैं वो बीते सालों में पहले होती रही हैं लेकिन इधर हाल के कुछ महीनों में उनमें बहुत ज़्यादा तेजी आई है, बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, और इस साल मई तक के जो आंकड़े बता रहे हैं वो 16 बार ऐसा हो चुका है कि दो विमान बिल्कुल खतरनाक नज़दीक आ गए थे खतरनाक रूप से और उनके टकराने का अंदेशा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बच गए हैं। तो ये खबर हिंदुस्तान दैनिक में भी है और जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो उसकी दूसरी सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा एक ये भी खबर आ रही है कि अब इस साल से हो सकता है कि बजट जो है वो फरवरी की बजाय जनवरी में ही पेश किया जाए ताकि लोगों को अपनी बजट की प्लानिंग के लिए ज़्यादा समय मिल सके।
बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। और क्या आपने कभी अपने मोबाइल से जाने अनजाने में किसी गलत नंबर पर डायल किया है? ज़रूर किया होगा और आपके मोबाइल पर भी इस तरह के कॉल कभी ना कभी ज़रूर आए होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस और एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी नंबरों पर भी बिना वजह फ़ोन लगा देते हैं? पाकिस्तान में इस तरह के वाकये बढ़ते जा रहे हैं। सुनिए इस्लामाबाद से वस्तुल्लाह खान की डायरी।
बाकी दुनिया का तो नहीं मालूम, परंतु शरारती फ़ोन कॉल्स का मसला पाकिस्तान में बहुत सीरियस होता जा रहा है। बोरियत दूर करने या फालतू समय बिताने के लिए लाखों पुरुष, महिलाएं और बच्चे रॉन्ग नंबर्स मिलाते हैं या फिर इमरजेंसी नंबरों पर बिना मतलब डायल करके अपना और दूसरों का वक्त ज़ाया करते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उनकी ये शोखी और शरारत उन लोगों को कितनी महंगी पड़ सकती है जो किसी एम्बुलेंस को बुलाना चाह रहे हों, फायर ब्रिगेड तक पहुंचना चाह रहे हों, डकैती की तला पुलिस को देना चाह रहे हों या फिर किसी मशकूक थैले या पोटली के बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज को तुरंत इत्तला करना चाह रहे हों। कराची पुलिस ने सन 2000 में 15 के नाम से एक इमरजेंसी हेल्पलाइन स्थापित की। इस हेल्पलाइन की खूबी ये थी कि भले मोबाइल सिम ना भी हो तब भी आप इमरजेंसी में हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। पिछले वर्ष 15 पर 4 मिलियन कॉल्स आईं। इनमें से 3.5 मिलियन कॉल्स खामखा या शरारत में की गई थी। पंजाब में रेस्क्यू 1122 पर अगर आप फ़ोन करें तो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड वाले तुरंत मदद को पहुंचते हैं, मगर पब्लिक उनके साथ ये सलूक करती है कि एक ज़िला रहीम यार खान में सिर्फ एक महीने में रेस्क्यू 1122 पे जो 72,616 कॉल्स आईं उनमें से 90% घरों पे फारिग बैठे बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों या नौजवानों की थी। और ये लोग जान नहीं छोड़ते बल्कि महिला फ़ोन ऑपरेटर्स को छिछोरे लतीफ़े सुनाते हैं, पुरुष ऑपरेटर्स को गालियां देते हैं, गाने गाते हैं और इमरजेंसी लाइन मुसलसल इंगेज रखते हैं। और तो छोड़िए, आतंकवाद से निमटने के लिए नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा ने 2 वर्ष पहले 1717 के नाम से एक हेल्पलाइन इसलिए कायम की कि अगर कहीं कोई आतंकवादी घटना घटे या आप किसी मशकूक व्यक्ति को अजीबोगरीब हरकतें करते देखें तो तुरंत इत्तला दे दें। लेकिन पिछले महीने यानी जुलाई के पहले 20 दिन में नेक्टा की हेल्पलाइन पे जो 8,305 कॉल्स आईं उनमें से सिर्फ 41 सीरियस कॉल्स थीं। बाकी कुछ इस तरह की थी कि मेरे दिल में विस्फोट हो गया है, मैं क्या करूं, आत्मघाती जैकेट बनाने की रेसिपी क्या है भैया, क्या सब आतंकवादी नर्क में जाएंगे या कोई जन्नत में भी गिरेगा, इत्यादि इत्यादि। नेक्टा की हेल्पलाइन पे मजाकिया या नॉन सीरियस कॉल्स करने वालों में एक साहब वो भी हैं जिन्होंने 2411 कॉल्स की और सब की सब फजूल। ये हरकतें उस देश के लोग कर रहे हैं जो टेररिज्म से जूझने वाले चोटी के 3 देशों में शुमार होता है। आपके यहाँ भारत में तो सब ठीक है ना, दिल्ली हो के कोलकाता के, मुंबई के, चेन्नई, वहाँ तो इमरजेंसी नंबरों के साथ ऐसा मजाक नहीं होता होगा ना।
ये थे इस्लामाबाद से वस्तुल्लाह खान। और कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर निखिल रंजन से।
बीबीसी समाचार। रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक खेलों का समापन समारोह शुरू हो गया है। 16 दिन तक चले खेलों के सबसे बड़े मुकाबले में अमेरिका ने 46 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 121 पदक जीतकर अपना दबदबा कायम रखा है। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब एर्दोवान ने कहा है कि शनिवार को आत्मघाती हमला करने वाले चरमपंथी की उम्र 12 से 14 साल के बीच है। इसराइल की सेना ने कहा है कि उसके विमानों और टैंकों ने गजा पट्टी के उत्तर में बेथनाउन शहर पर गोलाबारी की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। अगला कार्यक्रम विश्व भारती ठीक एक घंटे के बाद। तब तक दीजिए इजाजत।